ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक कल से उपलब्ध होंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आज से इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार कल आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक संस्थानों पर लगने वाले जीएसटी कर का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजधानी में सब्जियों के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार विफल रही है और भाजपा ने अपने पार्टी सदस्यता अभियान के तहत आज राजधानी की 250 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक कल से उपलब्ध होंगे। वाहन मालिक दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में किया जाएगा। इन न्यायालयों में द्वारका, कड़कड़ुमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जहां सभी प्रकार के व्यावसायिक और निजी वाहनों के लंबित भुगतान और यातायात चालानों का निपटान होगा। प्रत्येक लोक अदालत द्वारा 1000 चालानों और नोटिसों पर सुनवाई की जाएगी। सभी कोर्ट परिसरों की कुल 180 लोक अदालत में कुल 1,80,000 चालानों तथा नोटिसों का निपटान किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक जानकारी के लिए यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 0112584444 और 1095 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स आईएसटीएस द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आज से किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान देश में अंग प्रत्यारोपण करने वाले प्रशिक्षित और कुशल शल्य चिकित्सकों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एम्स के शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर वीके बंसल ने कहा कि समिति सरकारी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़ाने और शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए प्रयास कर रही है।
इस सोसाइटी का मेन पर्पज है कि हम इंडिया में और ट्रांसप्लांट सर्जन्स कैसे ट्रेन करें। गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसप्लांट बहुत कम हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में और कैसे इसको बढ़ाया जाए। जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया कि हम 60 मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसप्लांट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करेंगे, जब बजट सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वही इस सोसाइटी का मेन पर्पज है कि गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए।
इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सकों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी को दूर करना था। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कल आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो शैक्षणिक संस्थानों पर लगने वाले जीएसटी कर का मुद्दा उठाएगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। सुश्री आतिशी ने कहा है कि पिछले महीने शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले शोध अनुदान पर जीएसटी कर न देने पर केंद्र सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जो अनुचित हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी देश में शोध अनुदानों पर कर नहीं लगाया जाता।
पहला जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आएगा वो है रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगने का मुद्दा। देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी ना देने की वजह से शोकॉज नोटिसेस आए, ये बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार इसका पुरजोर विरोध करती है।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने शराब की तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को 2 अलग अलग मामलों में राजधानी के द्वारका एक्सप्रेसवे क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध शराब के लगभग 4,500 क्वार्टर जब्त किए गए हैं, जिन्हें हरियाणा से दिल्ली में बिक्री के लिए लाया जा रहा था। इसके अलावा आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली 2 कारें भी पुलिस ने जब्त की हैं। द्वारका जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत गुप्ता ने बताया है कि जब्त की गई शराब केवल हरियाणा में बिक्री के लिए वैध है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को सर्विलांस के माध्यम से पकड़ा गया है। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जस्विता, संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। ये छात्रवृत्ति 6 कक्षा से स्नातकोत्तर तक के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी। छात्रवृत्ति के तौर पर 15,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। ये छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आईआईटी, आईआईएम और विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी इस वर्ष 1 अक्टूबर तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, जिसका पता है sbifashascholarship.org। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री धनखड़ ने कहा कि सड़क संपर्क, स्कूल, बिजली, शौचालय और इंटरनेट सेवा के गांवों तक पहुंचने से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 114वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा श्रोता 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और SMS पर आई लिंक के जरिए सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। श्रोता नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। इस कड़ी के लिए सुझाव इस महीने की 27 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजधानी में सब्जियों के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार विफल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण दिल्ली की जनता को अप्रत्याशित महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार जमाखोरों को भी बढ़ावा दे रही है। भाजपा ने अपनी पार्टी सदस्यता अभियान के तहत आज राजधानी की 250 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर और केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वरिष्ठ नेता हर्ष मल्होत्रा उपस्थित रहे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि झुग्गी क्लस्टरों में रह रहे लोग उत्साह के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल सरकार से निराश हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि बीते 10 वर्षों में सरकार ने झुग्गी बस्तियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि सरकार झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का लगातार आदेश दे रही है। श्री मल्होत्रा ने पटपरगंज के इंदिरा कैंप में कहा कि आज झुग्गीवासी भी अपने घर का सपना देखते हैं और उन्हें विश्वास है कि ये तभी साकार होगा जब दिल्ली में भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी। वहीं डॉ अलका गुर्जर ने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान नए सदस्यों का पार्टी के प्रति आकर्षण देखने को मिल रहा है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और उनके समकक्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य रणनीतिक योजना बनाना, भविष्य के खतरों, चुनौतियों और संघर्षों का अनुमान लगाना तथा उनके प्रति स्वयं को तैयार करना है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। वे आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग 143 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर वर्तमान में लगभग 470 मिलियन डॉलर कर दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि इस सहायता ने एशियाई खेलों में 107 पदक और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक के साथ देश के असाधारण खेल प्रदर्शन में काफी योगदान दिया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने ऐसे धोखाधड़ी के प्रति लोगों को आगाह किया है जिसमें जालसाज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पंजीकरण फीस के रूप में 8,000 रूपये की मांग कर रहे हैं। तथ्य जांच इकाई ने कहा कि लोगों को जाली पत्र भेजे जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत उनका आवेदन पंजीकरण फीस देने के बाद स्वीकृत किया जाएगा। सरकार ने इस तरह के किसी भी दावे को खारिज किया है और कहा है कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक कल से उपलब्ध होंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आज से इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार कल आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक संस्थानों पर लगने वाले जीएसटी कर का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजधानी में सब्जियों के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार विफल रही है। और भाजपा ने अपने पार्टी सदस्यता अभियान के तहत राजधानी की 250 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।